दूसरा इतिहास अध्याय 16, अध्याय 16 पद 1। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। वो उनकी सामग्री के खेप को बंद करना चाहता था, इसलिए उसने शहर को दृढ़ किया ताकि वो यहूदा की आवश्यकताओं को वहां पहुंचने से रोक सके। अध्याय 16 पद 2। तब आसा ने, उसके पास समृद्ध राज्य था, उन्होंने 25 वर्ष शांति के बिताए थे विजय और परमेश्वर की वाचा के साथ। अब वे धनी हो गए थे, वे शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने यहोवा के भवन और भंडारों में से धन निकाला। अध्याय 16 पद 2 में आगे लिखा है, यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी आराम के राजा बेन-हदद के पास दूत भेजकर ये कहा, तेरे पिता और मेरे पिता ने वाचा बांधी थी, मैं तेरे पास सोना चांदी भेज रहा हूं ताकि तू उस संधि को बनाए रखे, और मैं चाहता हूं कि तू इसराइल पर उत्तर से आक्रमण करे, क्योंकि वहां वे शहर को दृढ़ कर रहे हैं, वे हमला करने की तैयारी में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू उन पर उत्तर से हमला करे। इसलिए बेन-हदद ने इसराइल पर उत्तर से हमला आरंभ कर दिया। बाशा ने अपनी सेना को दक्षिण की ओर दृढ़ किए गए शहर में स्थित किया था। बेन-हदद ने उत्तर से बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने गलील के ऊपरी भाग में दान शहर को जीता और आगे बढ़कर गलील के समुद्र के किनारे नेप्ताली के शहर को जीत लिया। जब आरामियों ने हमला आरंभ किया और उत्तरी भाग ले लिया तो बाशा दृढ़ किया हुआ शहर छोड़कर अपनी सेना के साथ बचने के लिए उत्तरी सीमा तक लौट गया। जब उन्होंने ऐसा किया, आसा ने आगे बढ़कर उनका निर्माण करने की वस्तुएं जो उन्होंने शहर को दृढ़ करने के लिए जमा किया था ले लिया और उससे अपनी सुरक्षा के लिए अपने शहरों को दृढ़ किया। इस तरह उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने अपनी सेना और दौलत का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का हल खरीद लिया और सफल रहा। ये बहुत सफल कार्य था। उन्होंने सेना को सुव्यवस्थित किया और निर्माण की सामग्री ले गए। फिर भी परमेश्वर ने नबी हनानी उसके पास भेजा। अध्याय 16 पद 7 से लेकर 9 तक। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लुबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। उसके पास जो कुछ था निश्चय ही उसे वो अपने आप में फूला हुआ था। उसकी कूटनीति और अपनी सफलता पर नबी ने आकर उसे डांटा और फटका कर कहा, तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, अर्थात तू अब परमेश्वर के नाम से अब नहीं चलता, तू सहायता के लिए परमेश्वर को नहीं पुकारता है, तू अब परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता महसूस नहीं करता है, क्योंकि तूने आराम के राजा पर भरोसा किया वरन परमेश्वर पर नहीं। क्या तू नहीं जानता कि आराम का राजा तेरे हाथों से बच गया है? क्या तुझे याद नहीं पहले जब कूशी और लुबियों ने बड़ी सेना और रथों के साथ तुझ पर हमला किया और तूने परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया था। ये परमेश्वर की सच्चाई है, जिसे अपने हृदय में आज आप ज्योतिर्मय कर ले। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता से वो अपना सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर क्या कहता है? यही कि वो आपके जीवन का उपयोग करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आप पर अपनी आशीषों की वर्षा करना चाहता है। परमेश्वर लोगों को तलाशता रहता है जिन्हें वो प्रयोग कर सके, कि अपनी सामर्थ आपके द्वारा बरसा सके, क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों ओर संसार में पहुंचना चाहता है। परमेश्वर को संसार तक पहुंचने के लिए लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके मन उसकी ओर निष्कपट है, ताकि उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाएं और उनके जीवनों से अपना सामर्थ्य प्रकट करें। हे परमेश्वर, हमारे हृदय अपनी ओर पूरी तरह से बदल दे। हमारे हृदयों को संसार की ओर से हटा, हमारी इच्छा और उद्देश्यों से हटा, हमारे अपने लक्ष्य और अभिलाषाओं से हटा। हे परमेश्वर, मेरा हृदय पूर्णतः तेरी ओर हो। मेरा हृदय को अपनी इच्छा और चाहत की ओर से भटकने न दे। परमेश्वर, मेरा मन तेरी ओर निष्कपट रहे, क्योंकि तेरी दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि तू हमारी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाए। दूसरे शब्दों में, जैसा हम पहले कह रहे थे, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जिनका जीवन परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के अनुरूप है। जब ऐसा मनुष्य मिलता है और वो मनुष्य परमेश्वर के राज्य की आवश्यक चीजों को मांगता है, तब परमेश्वर उन्हें देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं मांग रहा है। याकूब 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वे हमारी इच्छा पूर्ति के लिए होती है। हम अपनी इच्छाओं को सामने रखते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें पूरी करने में हमारी सहायता करे। परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो पूर्णतः परमेश्वर और उसकी चीजों पर आश्रित हो, क्योंकि परमेश्वर को आज संसार में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। संसार आज निराशा की हालत में है। परमेश्वर को मनुष्यों की आवश्यकता है। परमेश्वर मनुष्यों को देखता है और उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। हे परमेश्वर, मैं ऐसा ही मनुष्य होना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरी मनोकामनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो। जैसा तू चाहता है परमेश्वर, वैसे ही मुझे प्रयोग कर, और ये मेरी निरंतर प्रार्थना है। परमेश्वर, मुझे अपने प्रयोग योग्य बना। मैं जानता हूं पथ से भटक जाना सहज है, तेरे उद्देश्य से या योजना से कहीं और निकल जाना और मिट जाना सहज है। मैं निरुद्देश्य यों ही मर जाना नहीं चाहता। मैं परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहता हूं, और यही कारण है कि मैं बना हुआ हूं। इस भ्रष्ट समाज में रहते हुए ये उद्देश्य रखना कि परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं। अपने जीवन की शुरुआती दिनों में अपनी मर्जी या इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा था, और मुझे ये ज्ञात हुआ कि ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। तभी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जीवन का असल उद्देश्य ये हो कि मैं दिन प्रतिदिन वैसा बनता जाऊं जैसा तू मुझे बनाना चाहता है, एक ऐसा सेवक जो तेरी इच्छा को तेरे अनुसार अपने जीवन के द्वारा पूरी करे और तू अपना सामर्थी कार्य मनुष्य पर उसके द्वारा प्रकट कर सके। परमेश्वर अपनी सामर्थ और महानता को मेरे द्वारा प्रकट कर। परमेश्वर तू ऐसे ही लोगों को ढूंढता है और मैं वैसा ही पुरुष बनना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं सिद्ध हूं, पर मेरी चाहत है कि मैं सिद्ध बनूं। परमेश्वर मनुष्य के हृदय की इच्छा जानता है कि जब से मैंने अपना जीवन पूरी तरह से मसीह यीशु को सौंपा, तभी से मैं एक मनुष्य बन सका जिसे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। अध्याय 16 पद 10। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ। सत्य प्रायः क्रोध उत्पन्न करता है। अध्याय 16 पद 10 में आगे लिखा है, और उसे काट में ठुकवा दिया क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। ये वही राजा है जिसने पहले परमेश्वर को प्रार्थना चढ़ाई और लोगों में आत्मिक सुधार लाया था, हम परमेश्वर तेरी सेवा करेंगे। अब वो क्रोध में अंधा हो गया क्योंकि नबी उसके लिए परमेश्वर की सच्चाई लेकर आया। उसने नबी को कैद में डाल दिया। अध्याय 16 पद 12। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही का शरण ली। वो मर गया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि उसने प्रभु को खोजा होता, प्रभु ने उसके पैर का रोग चंगा कर दिया होता। परंतु आपने देखा है कि उसने मनुष्य और मनुष्य के बुझ बल पर भरोसा किया। मनुष्य का बल जाता रहेगा, स्वयं पर भरोसा मत कर। मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है। भजन संहिता 118:9 पद। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। उसने प्रभु पर से भरोसा उठा लिया। ये दुखद और भयानक कहानी है। एक मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसे से आरंभ किया और परमेश्वर के सामर्थ को जाना बड़ी विजय, बड़ी आत्मिकता देखी थी, वो अपने जीवन के अंत में मनुष्यों पर भरोसा करके, मनुष्यों के बुझ बल पर, और वो मनुष्यों पर भरोसा करते हुए मर गया।